आस्तिक के फार्म हाउस में नीरज अपनी कार लेकर आया था। आस्तिक और अरुणिमा दोनों फार्म हाउस से बाहर निकले। आस्तिक ने नीरज को पूर्णिमा के कपड़े लाने को कहा था। नीरज ने जो समझा वो अपने हिसाब से ले आया, लेकिन अरुणिमा को ये इतना बुरा नहीं लगा। ये एक हल्की सी मैक्सी टाइप ड्रेस थी। अरुणिमा वो ड्रेस पहनकर बाहर खड़ी थी। आस्तिक बाहर आया और नीरज से कहा, अरुणिमा को घर छोड़ देना। तुम कहाँ जा रहे हो? अरुणिमा ने फिक्र जताते हुए पूछा। आस्तिक रुक गया। वो एकदम से पलटकर अरुणिमा को देखते हुए बोला, मुझे कुछ जरूरी काम खत्म करने हैं। इसके बाद आस्तिक सीधे अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गया और अरुणिमा नीरज के साथ घर आ गई। लेकिन उसे आस्तिक की फिक्र हो रही थी। उसका अभी अभी फीवर उतरा था और तबीयत भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। ऐसे में वो काम को लेकर इतना सीरियस हो गया कि उसे अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रहा। आस्तिक वहां से सीधे अपने ऑफिस गया और वहां पहुंचते ही सबसे पहला काम किया जो उसके लिए सबसे जरूरी था। अरुणिमा जब अपने घर पहुंची तो उसके फोन पर उसके पापा का एक मैसेज आया, जिसे देखकर वो थोड़ी हैरान हुई। उसमें लिखा था कि आस्तिक ने उनकी कंपनी को डूबने से बचा लिया है। उसने अपने कई शेयर होल्डर्स को अरुणिमा के पापा के शेयर खरीदने के लिए कहा, जिससे अचानक उनकी कंपनी शेयर मार्केट में अच्छा परफॉर्म करने लगी थी। अरुणिमा ये खबर सुनकर खुशी रही थी कि तभी उसके फोन पर आस्तिक का कॉल आया। उसने तुरंत कॉल उठाया। वो उसे थैंक यू कहना चाहती थी, लेकिन सामने से जो आस्तिक ने कहा उसे सुनने के बाद अरुणिमा कुछ बोल ही नहीं पाई। मुझे पता है कि तुम्हें खबर मिल चुकी होगी कि तुम्हारे पापा शेयर मार्केट में फिर से आ गए हैं, और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। आखिर उनकी कंपनी को बचाने के लिए तुमने अपना सौदा जो किया है, ये उस एहसान की कीमत है जो फार्म हाउस पर तुमने मेरे ऊपर किया था, बीमारी की हालत में मेरी देखभाल करके। उम्मीद है अगली बार तुम किसी और फायदे के लिए कोई और तरीका ढूंढोगी। अरुणिमा के होंठ खुले के खुले रह गए, लेकिन उसके पास कहने को कोई शब्द नहीं था। आस्तिक फोन रख चुका था, लेकिन अरुणिमा अब भी स्तब्ध खड़ी थी, फोन को हाथ में थामे हुए। उसे तकलीफ इस बात की थी कि आस्तिक को लगा कि उसने उसकी देखभाल सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि वो अपने पापा की कंपनी बचाना चाहती थी, जबकि सच्चाई ये थी कि उसने उसकी देखभाल सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उसे आस्तिक की परवाह थी। आस्तिक ऑफिस सिर्फ इसलिए आया था ताकि अपने शेयर होल्डर्स को अरुणिमा के पापा की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मना सके। और उसके बाद उसने एक और बहुत जरूरी काम किया, इसके बारे में कहानी में आगे पता चलेगा। ऑफिस से निकलकर आस्तिक अपनी कार में बैठा और अगले 15 मिनट में वो एक नाइट क्लब में मौजूद था। बार काउंटर के सामने एक ऊंचे से स्टूल पर बैठकर वो ड्रिंक कर रहा था। शराब के स्वाद ने उसके दिमाग को पूरी तरह झुंझला दिया था। वो इतना ज्यादा हताश हो चुका था कि शराब का नशा भी उस पर असर नहीं कर रहा था। सभी औरतें जहरीली नागिन होती हैं और उन्हें झूठ बोलना बहुत अच्छे से आता है। किसी के जज्बातों के साथ खेलना ये एक औरत बहुत अच्छे से जानती है। नशे की हालत में वो बस यही बोल रहा था। अमायरा ने अपने बूढ़े पति के साथ मिलकर उसे धोखा दिया था, और अब आस्तिक को ऐसा लग रहा था कि अमायरा उस पर हंस रही है, उसकी बेवकूफ़ी पर, उसके प्यार पर, उसकी फीलिंग्स पर। देर लगी, लेकिन आस्तिक को समझ आ गया था, अमायरा ने कभी उससे प्यार किया ही नहीं था। वो तो बस उसे खुश करने और अपनी फिजिकल नीड्स पूरी करने का एक जरिया थी। नशे की हालत में आस्तिक ने एक और ड्रिंक गले के नीचे उतारी, लेकिन उसका सिर अभी भी भारी था और उसके जहन में अब भी अमायरा की, जो उस पर तंज कसते हुए हंस रही थी। क्लब में तेज म्यूजिक और बीट्स गूंज रही थी। वो स्टूल से उतरकर हाथ में वाइन की बोतल लिए पास के सोफे पर निढाल बैठ गया। सामने लोग बेशर्मी से एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे और पूरे क्लब में काले और लाल रंग की लाइट्स चमक रही थी। लेकिन इस सबके बीच आस्तिक को ना कोई शोर सुनाई दे रहा था, ना ही लोग दिखाई दे रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वहां कुछ है ही नहीं, और जो आवाज उसके कानों में पड़ रही थी वो थी अमायरा की वाहियात हंसी। आस्तिक वाइन की बोतल को होठों से लगाए उसे खत्म कर रहा था, तभी उसके पास एक लड़की आई जो बहुत ही ट्रांसपेरेंट कपड़े पहने हुए थी। उसके होठों पर गहरी लाल लिपस्टिक थी और ड्रेस हाथ से भी छोटी लग रही थी। वो सीधे आस्तिक के पास आकर बैठ गई और अपना एक पैर आस्तिक की जांघों पर रख दिया, फिर धीरे धीरे उसकी शर्ट के बटन छेड़ते हुए उसके सीने पर हाथ फेरने लगी, जैसे उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। आस्तिक के होठों पर अब भी वाइन की बोतल थी, लेकिन उसे महसूस हो चुका था कि कोई उसके शरीर से चिपका हुआ है। अब तक नशा उसकी आंखों को इतना धुंधला कर चुका था कि उसे कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। उसने नशे की हालत में अपनी आंखें खोलकर उस लड़की को देखना चाहा, लेकिन दो चार बार कोशिश करने के बावजूद उसे उसका चेहरा ठीक से नजर नहीं आया। उसका दिमाग अमायरा की बातों से इतना हताश था कि धीरे धीरे उसे उस लड़की के चेहरे में अमायरा ही दिखने लगी। वो लड़की आस्तिक से कुछ कह रही थी, लेकिन नशे की वजह से उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे बस यही लग रहा था कि अमायरा उस पर हंस रही है, उसे बेवकूफ समझ रही है। गुस्से में आकर आस्तिक ने अचानक उस लड़की की गर्दन पकड़ ली और उसे सोफे पर दबा दिया। लड़की चौंक गई और खुद को आस्तिक से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन आस्तिक गुस्से में पागल हो चुका था। वो उस पर चिल्लाते हुए बोला, यू बिच, आई विल किल यू, मैं तुझे जान से मार दूंगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ खिलवाड़ करने की, यू नो हु आई एम। क्लब के बाउंसर तुरंत आस्तिक की तरफ दौड़े और किसी तरह उस लड़की को उसके चंगुल से छुड़ाया। आस्तिक नशे में पूरी तरह से पागल हो चुका था, उसने पूरे बार में तबाही मचा दी। इसके बाद वो खुद ही अपनी कार ड्राइव करता हुआ घर की ओर निकल गया। हैरानी की बात ये थी कि इतने नशे में भी उसने गाड़ी सही से चलाकर खुद को किसी बड़े हादसे से बचा लिया। हाँ, कुछ जगहों पर उसकी गाड़ी डगमगाई जरूर, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लड़खड़ाते हुए कदमों से आस्तिक अपने घर के अंदर दाखिल हुआ, लेकिन उसकी निगाहें किसी को ढूंढ रही थी। वो चीजों का सहारा लेते हुए सीधे अरुणिमा के कमरे तक पहुंचा। अरुणिमा इस वक्त अपने कपड़े सेट कर रही थी, उसके हाथों में कपड़ों का ढेर था। तभी आस्तिक अचानक उसके कमरे का दरवाजा खोल देता है और तेज आवाज से अरुणिमा चौंक जाती है। वो संभल नहीं पाती और उसके हाथ से सारे कपड़े जमीन पर गिर जाते हैं। वो घबराई हुई निगाहों से आस्तिक को देखती है और कहती है, आस्तिक क्या हुआ तुम्हें? आस्तिक तेज तेज सांसें ले रहा था। उसका चेहरा हताशा और पसीने से भीगा हुआ था और उसकी आंखें बुरी तरह से लाल थीं। वो लड़खड़ाते हुए कमरे के अंदर दाखिल हुआ। क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? अरुणिमा उसे देखकर सवाल करती है। उसे आस्तिक की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी और जब आस्तिक उसके पास आया तब अरुणिमा को एहसास हुआ कि वो शराब पी कर आया है। उसमें से शराब की तीखी गंध आ रही थी। अरुणिमा ने नाक पर हाथ रखते हुए कहा, आस्तिक क्या हो गया है तुम्हें? आस्तिक ने अपने हाथ से अरुणिमा की बाजू पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी कसकर थी कि अरुणिमा की बाजू में दर्द होने लगा। वो घबरा जाती है और कहती है, आस्तिक क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। लेकिन आस्तिक ने उसे नहीं छोड़ा बल्कि धीरे से अपना चेहरा उसके कानों के पास लाया और अपनी नशीली लेकिन दर्द भरी आवाज में फुसफुसाया, मुझे भी दर्द हो रहा है। उसने धीरे से अरुणिमा की बाजू छोड़ी और फिर उसके हाथों को अपने हाथ में ले लिया। वो धीरे से अरुणिमा का हाथ उठाकर अपने सीने पर रखता है और कहता है, मुझे भी यहाँ बहुत दर्द हो रहा है।
तुम तो माहिर हो ना मेरे दर्द का इलाज करने में, तो कर दो ना मेरे इस दर्द का इलाज, और इसके बदले तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें वो दूंगा। तुम्हारे पापा की कंपनी को टॉप पर ले आऊंगा, चाहो तो तुम्हारे नाम पर भी एक मल्टीनेशनल कंपनी खोल दूं। तुम जो कहोगी मैं वो दूंगा, बस इस दर्द को थोड़ा कम कर दो। इतना कहते हुए आस्तिक लगभग अरुणिमा पर गिरने ही वाला होता है, लेकिन अरुणिमा उसे तुरंत थाम लेती है और सहारा देते हुए बेड तक ले जाती है। वो देखती है कि आस्तिक नशे की हालत में बेहोश हो चुका है और उसकी आंखें बंद हो गई हैं, मतलब अब वो गहरी नींद में जा चुका है। अरुणिमा उसे ठीक से बेड पर लिटाती है, उसके जूते खोलती है, टाई ढीली करती है और शर्ट के बटन भी खोल देती है। वो पिछले कुछ दिनों से आस्तिक को बेहद परेशान देख रही थी। उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन इतना जरूर महसूस हो रहा था कि कोई गहरी बात है जो आस्तिक को भीतर से तोड़ रही है। हालांकि अरुणिमा की अपनी परेशानियां भी कम नहीं थीं। उसे अपने बच्चों की चिंता थी, आस्तिक को उन बच्चों को अपनाने की कोई जरूरत नहीं थी। वो अपने बच्चों का ख्याल खुद रख सकती थी। यही वजह थी कि वो जल्द से जल्द आस्तिक से दूर जाने की प्लानिंग कर रही थी।